नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञान जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरूपान् श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतोर्पंगु मामंदमतेर्गतिमत्सर्वस्वपदां भोजो राधा मदन मोहनो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमृतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो भी कुछ दिनों के लिए हम डेमन्स इन वृंदावन, वृंदावन में असुरों का चर्चा करते। तो एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि हम मंदिर में आते हैं तो उधर बहुत सारे असुरी स्वभाव के लोग भी हमको मिलते हैं। तो उसके उत्तर में कहा गया था कि वैकुंठ में आपको असुर नहीं मिलेंगे, लेकिन वृंदावन में कृष्ण को वध करने के लिए बहुत सारे असुर जरूर आए थे। उसी प्रकार कृष्ण भावना में हम जब प्रगति करते हैं उस समय बहुत सारे असुर हमारे कृष्ण भावना को वध करने के लिए प्रयास करते हैं, और उन असुरों को वध करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। उन असुरों को वध करना है तो कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। जिस प्रकार कृष्ण ने उन असुरों को वध किया था 5000 साल पहले वो लीला कर रहे थे, उसी प्रकार हमारे कृष्ण भावना की जीवन में ये जितने भी असुर है, जितने भी अनर्थ है, इन अनर्थों को वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमको सहायता करते हैं। तो भक्तिनोद ठाकुर इसके बारे में चैतन्य शिक्षामृत में लिखते हैं कि कृष्ण लीलाओं का एक गुह्यमय रहस्य क्या है। कृष्ण लीलाएं दिव्य धाम में आध्यात्म जगत में तो चलता ही रहता है और इस भौतिक जगत में भी चलता रहता है नित्य रूप में। ऐसा नहीं कि भगवान इधर लीला समाप्त करने के बाद फिर आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे और कुछ समय के बाद वापस आएंगे। भगवान का नित्य लीला होता है और नैमित्तिक लीला होता है। नित्य लीला मतलब जो रेगुलर होने वाले नित्य होने वाले लीलाएं, और कुछ प्रकार की लीलाएं हैं कुछ नैमित्तिक लीला बोला जाता है जो कभी कभी होता है, वो हर वक्त नहीं होता है नैमित्तिक लीलाएं। जैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान जब लीलाएं करते एक है गोलोक वृंदावन धाम, दूसरा है गोकुल वृंदावन। जो आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है उसको गोलोक वृंदावन बोला जाता है, ये भौतिक जगत में जो वृंदावन है इसको गोकुल वृंदावन बोला जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन है उधर भगवान कुछ लीलाओं को संपन्न नहीं कर सकते, जिस प्रकार मथुरा को वृंदावन त्याग करके मथुरा जाना, ऐसे अक्रूर आके भगवान को लेके जाएंगे, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। और कुछ ऐसी लीलाएं जिस प्रकार भगवान असुरों को वध करने की जो लीला है, ये वृंदावन में ये असुरों की वध करने की लीला या आध्यात्मिक वृंदावन में या परव्यों में, उधर ये असुरों की वध करने की लीला ये स्वप्न में हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूतना आ रही है, तृणावर्त आ रहा है, उधर कृष्ण जाके वध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये उन 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 उधर स्थूल रूप में वो होता नहीं है, लेकिन उन लीलाओं को संपन्न करने के लिए भगवान खास करके इस धाम में आते हैं या भौतिक जगत में आके, भौतिक जगत के अंदर के जो वृंदावन धाम है उधर आके उन प्रकार की लीलाओं को संपन्न करते हैं। तो भागवतम में कहा गया है, अनार्थोपासनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य मजानंतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये भागवतम का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार लोगों के हृदय में जो अनर्थ है उसको अनार्थोपासनम, अनर्थों को नाश करना। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो नाश नहीं होता है, हम प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति के नौ स्तर में एक स्तर है, उसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। जैसे भक्ति के नौ स्तरों का वर्णन रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में कहते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संगो ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्तता आसक्तिस्ततो भावस तथा प्रेमाभ्युदांचति साधकानाम अयम प्रेम प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। ये श्लोक में, ये दोनों श्लोकों में भक्ति के नौ स्तर का वर्णन किया गया है, या भक्ति का नौ स्तर क्या होता है वो बताया गया है। भक्ति का नौ स्तर में सबसे पहला कि आधो श्रद्धा, श्रद्धावान व्यक्ति ही मंदिर में आता है, श्रद्धावान व्यक्ति ही हमारे पास या रुचि रखता है इन सब चीजों में। तो श्रद्धा, आधो श्रद्धा, श्रद्धा के बाद तथा साधु संगो, जिसके बाद श्रद्धा है तो मंदिर में आए तो साधुओं का संग होता है, और साधु लोग जैसे साधु का संग होता है तुरंत साधु क्या कहते हैं, आप हरि नाम का जप करो, गीता भागवत पढ़ो, ये भजन क्रिया हो गया, तो भजन क्रिया करना शुरू कर दिया। तो ये भजन क्रिया शुरू करने के बाद एक और स्तर आता है जिसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। ये श्रद्धा से साधुसंग, साधुसंग से भजन क्रिया बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति को पार करके जो अनर्थ निवृत्ति पार करके निष्ठा तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। क्योंकि ये जो अनर्थ निवृत्ति नामक ये जो स्टेज है, ये जो समय है, ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, ये बहुत लंबा समय तक चलता है। कितना लंबा समय तक चलता है हमको नहीं मालूम कि अनर्थ निवृत्ति का मतलब क्या है। अनर्था, अर्था मतलब हम जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो है अर्थ, उसको द पर्पस फॉर विच वी आर ऑल ट्राइंग फॉर। अनर्थ मतलब जो आपको इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो रुकावट पहुंचाते हैं, द थिंग्स विच अब्स्ट्रेक्ट अस फ्रॉम अटेनिंग आवर गोल इज कॉल्ड अनर्थ। तो ये अनर्थ निवृत्ति यानी ऐसे वस्तुएं जो हमारे हृदय में है, जो कृष्ण प्रेम, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए रुकावट पहुंचाती है, उन चीजों को उखाड़ के फेंकना। निवृत्ति मतलब उखाड़ के फेंकना। ये अनर्थ निवृत्ति एक भक्त को निजी प्रयास करना होगा और भगवान का सहायता के साथ। ऐसा नहीं कि व्यक्ति भजन क्रिया करता जाएगा और अपने आप से होता जाएगा, नहीं। एक व्यक्ति को ये अनर्थों को ढूंढना होगा, मेरे हृदय में क्या क्या अनर्थ है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो ढूंढ के उसको उखाड़ के फेंकने का प्रयास करना होगा। लेकिन वो प्रयास अपने तरीके से नहीं होगा, भगवान की सहायता से, भगवान की कृपा से ये दोनों की आवश्यकता होता है। वैसे श्रद्धा के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होता है, भगवान की, भक्तों की सेवा करते रहो, श्रद्धा बढ़ती जाएगी और भजन क्रिया अपने आप साधु आके स्वयं कृपा करके भजन क्रिया दे देंगे आपको। और लेकिन अनर्थ निवृत्ति जो है ये आपको प्रयास करना होगा, निजी प्रयास करना होगा। तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ये भागवतम के जो दसवां स्कंध के जो लीलाएं हैं वो साधकों के लिए किस दृष्टिकोण से इन लीलाओं को पढ़ना चाहिए वो वर्णन करते हैं। वैसे दसवां स्कंध के शुरुआत में निवृत्त्य तर्षे रूपगीयमानात् भवोषदाच्छुत्र मनोविरामात् ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसके अंदर कृष्ण लीलाओं का महिमा का वर्णन किया गया है। कृष्ण लीला ये जो बद्ध अवस्था में जो जीव है उनके लिए एक निवृत्त तर्षेर उपगीयमानात् भवोषदाच्छुत्र मनोविरामात्। निवृत्त तर्षेर मतलब जो तृष्णा से मुक्त हो गया है, जो मुक्त जीव है उनके लिए मनोविरामात्, उनके लिए आनंद प्रदान करता है कृष्ण लीलाएं, ये मन को आनंद प्रदान करता है। लेकिन वो बद्ध जीव के लिए वही कृष्ण लीला क्या करता है, एक एक दवाई के रूप में निवृत्त तर्षेर उपगीयमानात् भवोषदात्, ये भव औषधि के रूप में कार्य करता है। तो ये कृष्ण नाम जैसे हम उपदेशामृत के उस श्लोक में सुनते हैं कि जिस प्रकार एक गन्ने का जो रस है वो बीमार व्यक्ति को एक दवाई है, और जो बीमारी से मुक्त हो गया है जांडिस पीलिया रोग से जो मुक्त हो गया है उसके लिए एक सुंदर सा मीठा मीठापन का महसूस होता है। तो वैसे ही ये कृष्ण लीला भी जो बद्ध अवस्था में जीव है उसके लिए दवाई है, और वही कृष्ण लीला जो मुक्त अवस्था में है उनको वो एक रसायन के बराबर है, एक सुंदर सज्जूस के बराबर है। एक ही है कृष्ण लीला, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अलग अलग होता है। तो हम सब अभी इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था में होने के नाते जब हम कृष्ण लीलाओं को पढ़ेंगे उसको आस्वादन करना, उसको रिलीज करना ये कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है, लेकिन फिर भी इन कृष्ण लीलाओं को श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो अनर्थ है उसको नाश किया जा सकता है। और कृष्ण लीलाएं खास करके जो असुरों को वध करने की लीलाएं हैं, ये असुरों को वध करने की लीलाओं को श्रवण करेंगे हमारे हृदय में जितने भी प्रकार के अनर्थ है, एक एक अनर्थ का सूचना किया गया, एक एक असुर के बारे में जब हम एक एक असुर का चर्चा करेंगे तो एक एक अनर्थ को सूचित किया जाता है। तो कुछ लोग ये भी बात उठाते हैं, ये बड़ा चर्चा का कारण बना कि इस प्रकार आप असुरों को अनर्थों के बराबर तुलना करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा लीला कभी हुआ ही नहीं है, कब काल्पनिक है। ऐसा नहीं कि लीला काल्पनिक है, लीला काल्पनिक नहीं है, सच में श्री कृष्ण ने पूतना को वध किया, त्रिनावत को वध किया, इन सबको सच में घटनाएं हुई। लेकिन साथ साथ में ये भी जानना चाहिए पूतना एक प्रकार की अनर्थ का सूचक ही नहीं बल्कि वो सच भी है। पूतना इज नॉट जस्ट मिस्टिकल फिगर रिप्रेजेंटिंग अनर्थ ऑफ फॉल्स गुरु, पूतना वॉज डेली देयर एंड ऑल्सो शिव प्रेजेंट, दोनों बद सत्य है। एक है वो सत्य घटना है और साथ साथ में ये भी सच है कि एक एक प्रकार के अनर्थों को सूचक भी है, ये बात को हमको जानना चाहिए। क्योंकि बड़ा हमारे मंदिर में मीरा रोड मंदिर में एक बड़ा विवाद हुआ था जब हमने इस प्रकार की क्लास दिया, बाद में बोलने लगे कि क्या ऐसी लीला हुआ नहीं था, आपने ऐसा काल्पनिक करके बता रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लीलाएं हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कृष्ण लीलाएं नहीं हुई की बात नहीं है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की लीला कर भी रहे हैं अभी भी। बट एट द सेम टाइम ये भी बात सत्य है, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर ने इस बात को लिखे हैं कि एक एक असुर एक एक अर्थ को सूचित किया जाता है। तो भागवत में 10 विषय वस्तु है, 10 विषय वस्तुओं का सूचक इस प्रकार है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्मंत्राणि ईशानगतः निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषय वस्तुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य विषय वस्तु है आश्रय तत्व, 10वां विषय वस्तु है ये। 10वां विषय वस्तु का बृहद वर्णन हुआ है 10वां स्कंध में। ये आश्रय तत्व यानी कृष्ण का साक्षात जो लीलाएं हैं उनका वर्णन खास करके हमारे अनर्थों को निकालने के लिए है। जैसे तुरंत बताया गया है कि दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। दशमस्य विशुद्ध्यत्तम, ये दसवां स्कंध को या दसवां विषय वस्तु को और अच्छी तरीके से समझने के लिए ही बाकी सब नौ स्कंध है। मुख्यतः भागवतम मतलब दसवां स्कंध है, लेकिन बाकी जितने भी नौ स्कंध किसके लिए है, ये दसवां स्कंध को और अच्छी तरीके से समझने के लिए है, ये आश्रय तत्व को। तो उधर आश्रय तत्व मतलब भगवान का हम शरण ग्रहण करेंगे, कृष्ण का शरण ग्रहण करेंगे तो हमारे हृदय में जो सारे जितने भी असुर है उनको वध कर सकते हैं। तो ये कृष्ण लीलाओं का खासियत यह है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य प्रकार के लीलाओं में भी आए, अन्य प्रकार के रूप में भी आए, लेकिन उन लीलाओं में जब असुरों को वध किए तो क्या हुआ था, असुर को मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ था। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए, भगवान नरसिंहदेव के रूप में आए, उस समय उन असुरों को, जिन असुरों को उन्होंने वध किया, उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब कृष्ण स्वयं आते हैं, साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, जब वो वध करते हैं असुरों को, तब उन सबों को मुक्ति हो गया। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का एक खासियत है। अन्य वैष्णव सिद्धांतों से हमारा गौड़ीय वैष्णवों का एक विशेषता ये है, कुछ विशेष बातें हैं जो गौड़ियों के लिए स्पेशल है, जो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले थोड़ा स्वीकार करते हैं कि विष्णु से सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव ये मानते हैं कि कृष्ण से सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। अन्य जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो भागवत को पूर्ण तरीके से प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, गौड़ीय वैष्णव भागवत को ही पूर्ण तरीके से प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनमें से एक बात यह है गौड़ीय वैष्णवों का कि कृष्ण स्वयं जब आते हैं तभी असुरों का मुक्ति होता है, बाकी सब अवतारों में मुक्ति नहीं होता। इसलिए खास करके ये जो विषय है, किस प्रकार मैं अपनी अनर्थों को निकालूं अपने हृदय से कृष्ण लीलाओं का श्रवण करते हुए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ये जो कृष्णा बुक का जो रीडिंग है, हर रात को उन्होंने स्थापना किया, हर रोज भक्तों को उन्होंने बताया कि आप रोज सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ते रहो और दूध पीते समय ये कृष्णा बुक को आप पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो निकल सकते हैं। तो अनर्थों के विषय में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे बाद में, आज थोड़ा सा पुतना के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुरी कादंबिनी में कुछ अनर्थों के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, भजन क्रिया के स्तर में भी कुछ अनर्थ होते हैं और अनर्थ निवृत्ति के स्तर में भी कुछ अनर्थ होते हैं। तो सबसे पहला हम ये भजन क्रिया के स्तर में जो अनर्थ है उन अनर्थों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जान सकते हैं कि हमारे जो भक्ति मार्ग में जो प्रगति है उसमें ये कितना महत्वपूर्ण है और होता भी है, सब कितना सच है। और आचार्य लोग जानते हैं कि ये सब चीजें होता है साधकों के जीवन में। तो सबसे पहला अनर्थ है उत्साहमयी अनर्थ है, ये भजन क्रिया के स्तर के अनर्थ है। दो प्रकार के अनर्थ है, एक है भजन क्रिया के स्तर के, दूसरे है अनर्थ निवृत्ति के स्तर के। तो उत्साहमयी अनर्थ, उत्साहमयी अनर्थ मतलब जब व्यक्ति शुरुआत में भजन करना शुरू करता है, भक्ति में आना शुरू करता है, उस समय वो कुछ श्लोकों को पढ़ लेगा और कुछ प्रभुपाद जी ग्रंथों को कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, अभी मेरे बराबर का कोई स्कॉलर है ही नहीं, मैं दुनिया में सबको प्रचार कर सकता हूं और कुछ मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी बस मैं दिव्य आनंद को प्राप्त किया, कृष्ण प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया मेरा। तो इसको बोलते उत्साहमयी अनर्थ। जैसे कोई बच्चा शुरुआत में वो ये बच्चों में भी देखते हैं कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है, वो समय उसको 95% मिलता है, 97% मिलता है, फर्स्ट रैंक मिलता है, तब वो सोचता है कि बस मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर हूं, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि बाद में जब वो 10th स्टैंडर्ड में आता है, 12th में आता है, बाद में IIT का एंट्रेंस है, तो पता लगता है कितना कितना मुश्किल है। तो वैसे ही जो शुरुआत में उत्साहमयी अनर्थ इस प्रकार का है, टू बी पफ्ड अप विथ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा कुछ इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और वो सोचने लग जाता है कि मेरे बराबर का कोई है नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, अभी बस कल सुबह गोलोक वृंदावन जन जा रहा हूं मैं। और खास करके अपने जो निकटतम जो लोग होते हैं, अपने माता पिता को, खास करके पिताजी को बोलेंगे कि तुम हिरण्यकशिपु हो, मैं प्रहलाद हूं। तो ये सब जो है उत्साहमयी अनर्थ है। तो ये भजन क्रिया के स्तर में आता है, शुरुआत में आता है, बाद में पता लग जाता है असलियत क्या है, जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और दूसरा है घन तरलता है ये जैसे व्यक्ति शुरुआत के समय वो भगवद गीता भागवत पढ़ना शुरू करता है, जप करना शुरू करता है और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद ऐसा लगता है कि मुझे जो भी मिलना था सब कुछ मिल गया और बस मुझे ये सब चीजें करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक बार भगवद गीता पढ़ लिया है, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। लिखा गया है कि द सेम चाइल्ड समटाइम्स बिकम्स डेलिजेंटली एंगेज इन स्टडीज एंड येट अदर टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स एंड लैक ऑफ रियल टेस्ट बिकम्स नेग्लिजेंट। इन दिस वे ए न्यू डिवोटी विल समटाइम्स प्रैक्टिस डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड समटाइम्स नेग्लेक्ट्स देम, बीइंग समटाइम्स एंड समटाइम्स नेग्लिजेंट हिज एंडेवर इज कॉल्ड घना तरलता। घना मीन्स, घना मतलब बहुत तीव्रता से वो भक्ति करता है, एक हफ्ता दस दिन अच्छा से किया, बाद में एक महीने तक गायब हो गया, फिर वापस। तो उनका जो मन है बहुत स्टडी नहीं रहता, उनका स्थिर नहीं रहता, जो भी कार्य कर रहा है तो स्थिरता से नहीं करता है, एक दिन अचानक आके सोलह माला कर देगा और बाद में पूछो कि क्या कर रहे हो, मुश्किल से दो माला होता है। ये जो ऊपर नीचे होना ये स्वभाव भजन क्रिया के स्तर में। उसके बाद व्यूढ़ विकल्प, ये व्यूढ़ विकल्प ये भी एक प्रकार का अनर्थ है जो शुरुआत में सारे जितने भी भजन क्रिया के स्तर में हैं वो अनुभव करते हैं। जैसे आप किसी को यूथ प्रीचिंग में खास करके अनुभव होता है, प्रचार करोगे तो तुरंत अगला दिन एक बार लेक्चर सुन के अगला दिन आके एक भक्त आपको बताएगा, प्रभु जी बस मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना, मुझे ज्वाइन करना है। और बाद में बोला नहीं थोड़ा सा पढ़ाई करो, बाद में ज्वाइन करना बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा जप करो, चैंट हरे कृष्णा, अटेंड प्रोग्राम्स, ऐसा बोलोगे तो एक महीने के बाद या दो महीने के बाद फिर से पूछो कि हमारा छुट्टी आ रहे हैं तो व्हाई डोंट यू स्टे इन द टेम्पल, तब बोलता है कि नहीं मैं सोच रहा हूं कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल। और दो तीन महीने के बाद फिर से पूछो, बोले नहीं वो संबंध टूट गया, अभी बस मेरा एक ही विचार है, बस आई वॉन्ट टू ज्वाइन। तो इस प्रकार लोगों का शिफ्ट होता रहता है, कभी सोचता है कभी 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 करता है रियलाइजेशन, कभी करते ये, कभी रस बनना चाहता है, कभी वैरागी बनना चाहता है, अस्तित्व में वो किसी चीज में स्थित नहीं है। तो ये शुरुआत में एक भजन क्रिया के स्तर में ये सब चीजें उत्पन्न होता है, वो हमेशा सोचता रहता है, जब भौतिक संकट आता है तुरंत सोचता है मैं वैरागी बन जाऊं, जब उसको सब जीवन अच्छा हो जाता है सोचता है कि नहीं वो ये भौतिक जीवन अच्छा है, घर परिवार के साथ रहो, अच्छी तरह सुखी से रहो और भजन करो अपना। तो ये किसी भी चीज में वो स्थान को फिक्स नहीं कर सकता है, हमेशा उसका जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उनको सोलह माला जप करना है, भगवद गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, सेवा करना है, इन सब चीजों को मन सोचता नहीं है, वो हमेशा इसके बारे में सोचता है क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं या मैं विवाह करके परिवार बसाऊं, इनके ऊपर ज्यादा विचार करता है। विचार अस्तित्व में किसके ऊपर करना चाहिए, अपनी साधना अपनी इसके ऊपर करना चाहिए, ये विचार जो है वो एक परिपक्व अवस्था में या कुछ स्थिर अवस्था में एक वरिष्ठों की निर्देशन के अनुसार ये निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन वो खुद इसी के ऊपर बार बार सोचता रहता है। तो उसके बाद और एक अनर्थ है विषय संग्रह। ये विषय संग्रह मतलब हमेशा उनके मन में जप करते समय, भागवत पढ़ते समय, उस समय बहुत सारे विषय वस्तुओं की मन में बहुत बार बार उनका स्मरण होता रहता है। कोई भी उन्होंने कोई कोई विषय वस्तु का संपर्क में आए, कोई पहले भक्ति में आने से पहले कोई पिक्चर देखा या कोई विषय आसक्ति के प्रति आकर्षण हो गया, कोई इंद्रिय तृप्ति के कार्य उन्होंने किया, बार बार उसके ऊपर रमण करते हैं ना मन में। बाहर तो चल रहा है, जपा चल रहा है, लेकिन मन ही मन में जो है वो पिक्चर चल रहा है। तो ये जो है ये एक प्रकार का अनर्थ है। पांचवा प्रकार का अनर्थ है नियमक क्षमा। ये नियमक नियमक क्षमा, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति जो शुरुआत में भजन करना शुरू करता है, ये निश्चय करता है, देखो मैं कल से ये करने वाला हूं। कल आता है सोचता है नहीं आज तो नहीं हो पाया, कल से मैं करूंगा। जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बता रहे थे, तो हर एक व्यक्ति रेजोल्यूशन लेता है, नहीं मैं आज से ये करने वाला हूं, कल से ये करने वाला हूं, बस ये साल में ये करने वाला हूं। वो कितना भी व्यक्ति वो कितना भी प्रण ले, कितना भी प्रकार के वो डिटर्मिनेशन के नहीं होने की वजह से वो अपने जो स्पिरिचुअल वोज है वो पूरा नहीं कर पाता। ये एक प्रकार का अनर्थ है। और तरंग रंगिणी, ये जो है वो छठा अनर्थ है। ये अनर्थ जो है वो भक्ति इसलिए करता है ताकि वो कुछ इंद्रिय तृप्ति करे, इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्ति करना बाय फॉलोइंग सम डिवोशनल एक्टिविटीज, ताकि मुझे और इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, तो इस उद्देश्य से भक्ति करना, यह भी एक प्रकार का अनर्थ है। तो कुछ अनर्थ है अनर्थ निवृत्ति के स्तर में। अनर्थ निवृत्ति के स्तर में कुछ अनर्थ जो पिछले पुण्य या पाप कर्मों से उत्पन्न हुआ अनर्थ है, और कुछ अनर्थ है जो भक्ति को अच्छी तरीके से नहीं करने की वजह से कुछ अनर्थ उत्पन्न होते हैं, और अपराध की वजह से उत्पन्न हुआ अनर्थ। तो ये अपराध से उत्पन्न हुआ जो अनर्थ है, ये अब बहुत मुश्किल है हमारे हृदय से निकालना। अपराध से उत्पन्न हुआ, खास करके वैष्णव अपराध से उत्पन्न हुआ जो अनर्थ और नाम अपराध से उत्पन्न हुआ अनर्थ, ये बहुत ही मुश्किल है हमारे हृदय से निकालना। अगर थोड़ा सा व्यक्ति भजन कर लेता है, थोड़ा सा अच्छी तरह से जपा वगैरह कर लेता है, तो बाकी सब जितने भी अनर्थ है, हमने पहले जो छह प्रकार के अनर्थों का वर्णन किया है, वो सारे अर्थों से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये जो वैष्णव अपराध से उत्पन्न हुआ जो अनर्थ है, उस अनर्थों से मुक्त होना, ये अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, उसके बाद जब तक शुद्ध नाम उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक हम लोग ये जो उच्च प्रकार के जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति के स्तर के जो अनर्थ है, उससे मुक्त नहीं हो सकते। और भी कुछ प्रकार के अनर्थों का वर्णन भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, लेकिन आज हम मुख्यतः चर्चा करेंगे पूतना के बारे में। पूतना सबसे पहला राक्षसी है जिनको भगवान ने वध किया। तो पूतना का परिचय देते हुए हम सबको मालूम है कि पूतना वो पिछले जन्म में वो बलि महाराज की बहन थी। बलि महाराज वामन देव जब बलि महाराज के सामने आए, तो वामन देव का इतना सुंदर सा तेज देख के बलि महाराज की जो बहन है, रत्नमाला उनका नाम है, तो वो सोचने लगी कि कितना सुंदर होगा कि अगर ये मेरे पुत्र होता तो उनके मन में इच्छा आई कि मुझे इनको पुत्र के रूप में प्राप्त करो भगवान को। भगवान कौन है? जो सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो उनके मन में इच्छा है कि मैं उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। तो भगवान ने क्या किया, उनको मौका दिया, ठीक है अगले जन्म में कृष्ण का अवतार लूंगा, तब मैं आके आपको पुत्र का एक मौका प्रदान करूंगा, पुत्र बनने का, मैं आपका पुत्र बनूंगा, आप मां का रूप, मां का स्थान प्रदान करूंगा। लेकिन बलि महाराज ने क्या किया, वामन देव को दान दिया 3 गज। जैसे वामन देव को दान दिया, वामन देव ने क्या किया, अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया, तो और सारा जितने संपत्ति भगवान ने बलि महाराज से हर लिया। जब ये बात हुआ तो इनकी जो बहन है रत्नमाला, वो सोचने लगी, अरे ये तो मेरा पुत्र का मांगना किया है, अगर ये मेरा पुत्र भी होता ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए मुझे। तो इनके अंदर दोनों बातें आए, भगवान को मारने की भी भावना थी, दूसरा उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करने की भावना थी। तो भगवान ने दोनों वरदान प्रदान किया। तो हम सबको मालूम है किस प्रकार पुतना का वध भगवान बहुत अद्भुत तरीके से करते हैं। भगवान केवल 8 दिन के थे उस समय, ये कंस वो सारे जितने भी अपने अनुचर हैं उन सबको बुलाए, बुला के उन्हें कहा कि क्या करना चाहिए, कृष्ण मुझे वध करने वाला है, अभी मालूम नहीं कहाँ है कृष्ण, वो अभी कहीं ना गोकुल में जन्म लिया है, तो क्या करना चाहिए। तब वो लोगों ने बताया कि बच्चों को मारने के लिए एक ही व्यक्ति है, बहुत एक्सपर्ट है, उनका नाम है पूतना, और पूतना को खेचरी बोला जाता है। खे मतलब शब्द के पौरुषम शु, खे मतलब आकाश, खम मतलब आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश को खम बोला जाता है संस्कृत में। चरी मतलब चलना, जो आकाश में चल सकती है उनको खेचरी बोला जाता है, खेचरी डमन। तो ये पूतना खेचरी है, ये पूतना बहुत एक्सपर्ट है, वो चुड़ैल है जो बच्चों को मार के खा लेती है, खास करके बालकों को ही करती है, वो बालिकाओं को वध नहीं करती है, ये पूतना की खासियत है। तो आप जाओ पूतना को बताओ, तो पूतना को जैसे कंस ने आदेश दिया वो पूतना वो वृंदावन में प्रवेश किया। जब पूतना वृंदावन में प्रवेश किए तो पूतना एक असुर होने के नाते, असुरी कुल में जन्म लेने के नाते, खेचरी होने के नाते वृंदावन में कैसे प्रवेश कर सकती है। तो इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि कृष्ण की लीला शक्ति पूतना को एक स्पेशल परमिशन दिया, ठीक है आप जाओ क्योंकि कृष्ण जो है वो सुंदर लीला करने वाले हैं, नहीं तो वृंदावन में असुरों का प्रवेश वो किसी का हो नहीं सकता, किसी का अधिकारी नहीं हो सकता। तो कृष्ण का लीला शक्ति पूतना को निमंत्रण दिया वृंदावन में, परमिशन दिया कि आप वृंदावन में जा सकते हो। तो पूतना जब गई अपने आप को बहुत सुंदर सा स्त्री के रूप धारण किया, और सभी लोग सोचने लगे कि अस्तित्व में साक्षात लक्ष्मी जी आई है अपनी नारायण से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी तो नारायण की पत्नी है और इधर कृष्ण जो है नारायण है, तो उनसे मिलने के लिए आई है करके सोचे। और जितने भी सारे देवता लोग भी इस पूतना को पहचान नहीं पाए, इतना हद तक यशोदा और रोहिणी ये दोनों भी पहचान नहीं पाए। वो सोचे कि इतना सुंदर सा स्त्री है वो कोई देवता हो सकती है, चलो जाने दो, कृष्ण को अपना देखना चाहती है, चलो जाने दो। तो पूतना गई बहुत सुंदर सा स्त्री का रूप धारण करते हुए, जैसे पूतना गई कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया। तो बहुत सारे आचार्य ये कृष्ण आंख क्यों बंद किए वो उसके बारे में लिखते हैं कि सबसे पहला कारण यह है कि उतना कृष्ण ने सोचा, अरे मैं क्या हो गया कि ये जो है बहुत सारे बच्चों को वध करती है, ऐसे स्त्री का मैं दर्शन क्यों करूं करके उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया। दूसरे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण ने आंख इसलिए बंद किया कि वो सोचने लगे कि अरे स्त्रियों को तो वध नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा है कि पहला ही जो मेरा जन्म लेती लीलाओं में सबसे पहले स्त्री को ही वध करना हो रहा है। और कुछ लोग बताते हैं कि कृष्ण ने अपना आंख इसलिए बंद किया तो वो सोचने लगे कि माँ के रूप में आ रही है, ठीक है मेरे मुझे अच्छी तरह से देखभाल करेगी, क्योंकि इस रूप में उन्होंने आंख बंद किया। तो अलग अलग कारण बताते हैं। तब जैसे पूतना आई कृष्ण के पास, तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में लिया, गोद में लेते ही अपने जो स्तन पान कराने के लिए कृष्ण को दिया। जैसे कृष्ण ने पूतना के स्तन को पान करने के लिए अपना मुंह को स्पर्श किया, उसी समय कृष्ण ने क्या किया, पूतना के जो स्तन से उन्होंने दूध के साथ प्राणवायु को भी हर लिया। अस्तित्व में कालकूट विष को धारण करके आई थी अपने स्तन के ऊपर पूतना। तो जैसे कृष्ण ने इस प्रकार किया, पूरा प्राणवायु को ले रहे थे, पूतना को इतना दुख हुआ तो भागने लगे, कृष्ण को बोलने लगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन इतना भयंकर सा रूप धारण किया पूतना, क्योंकि इतना डर की वजह से भयंकर सा रूप धारण करके वो वृंदावन के बाहर जाके, गोकुल के बाहर जाके वो मर के गिर पड़ी। जब ऐसा वर्णन किया जाता है कि पूतना का शरीर 8 मील लंबा हो गया था और कृष्ण आराम से पूतना के स्तनों के ऊपर खेल रहे थे, ऐसा वर्णन आता है भागवतम है। उतना के जो बाल थे वो कॉपर वायर जैसे थे, और उनके जो थाइस थे वो बड़े जांग थे जो बड़े पेड़ के ट्रंक्स जैसे थे, और उनका जो पेट था और नाभि था वो सूखा हुआ तालाब के जैसा था, ऐसा उनका वर्णन था, भयंकर स्वरूप वर्णन। तो ये जब नंद महाराज जो है वो वसुदेव से मिलके मथुरा से वापस आ रहे थे, नंद महाराज वो टाइम में नहीं थे जब पुत्रा अंदर गई, आ रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, इधर बहुत सुंदर सा सुगंध आ रहा है। अस्तित्व में सुगंध क्यों आ रहा था, क्योंकि ये जब पूरा पुतना का शरीर पड़ा हुआ था, ये पुतना का शरीर इतना लंबा था, वो मरा हुआ राक्षसी है, तो उनको जलाने के लिए तो इतना बड़ा चिता को कहां से लेके आएंगे, इसलिए सब लोग क्या उनका शरीर को काट रहे थे, काट काट के जला रहे थे। लेकिन भगवान ने उस असुरी राक्षसी का स्पर्श किया था, इसलिए उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि उनके शरीर को जलाने से बहुत सुंदर सा सुगंध उत्पन्न हो रहा था। तो नंद महाराज सोचने लगे क्या कुछ आपत्ति तो नहीं आया। तो उसी प्रकार सभी लोग जितने भी गोकुलवासी है सब लोग भागे ताकि देखें कि कृष्ण जो है वो आराम से खेल रहे पुतना के स्तनों के ऊपर। जब यशोदा मैया और उनके जितने भी साथी है सब लोग ये नहीं सोचे कि एक असुरी है राक्षसी है लाश है उसके ऊपर क्या जाए, वो ये सब चीजें देखे तुरंत भागे जाके कृष्ण को अपना लिए और वापस आके कृष्ण का सारे जितने भी रक्षा के मंत्र वो गाय का पूंछ दे के गाय का मूत्र से उनका नहलाने लगे, अभिषेक करने लगे, और केशव नारायण जितने भी मंत्र है कृष्ण का प्रोटेक्शन देने के लिए सब उनके वात्सल्य रस की वजह से वात्सल्य भाव से उन्हें ये सब कुछ किया। तो कृष्ण ने पूतना को वध किया। तो ये पूतना कौन है, ये पूतना के विषय में हम चर्चा किया कि वो तो पिछले जन्म में असुरी थी, इसलिए भगवान ने इन दोनों को दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया, एक है वो मां बनना चाहती थी और दूसरा वो विष पिला के मारना भी चाहती थी, इसलिए दोनों वरदान को नहीं किया। तो पूतना कौन से प्रकार के अनर्थ को सूचित करती है, विच काइंड ऑफ अनर्थ डज पूतना रिप्रेजेंट। पूतना रिप्रेजेंट फॉल्स गुरु, मिथ्या गुरु। ये मिथ्या गुरु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है मिथ्या गुरु जो बाहर के मिथ्या गुरु, एक्सटर्नल मिथ्या गुरु, एक्सटर्नल फॉल्स गुरु, जो हमको आदेश देते रहते हैं, नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा ये है तुम्हारा वो है, लेकिन वो सारे जितने भी आदेश है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए सहयोग नहीं देते। तो वैसे गुरु जो हमको कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए सहयोग नहीं देते वो एक पूतना है, और दूसरा प्रकार का गुरु है हमारा मन, मिथ्या गुरु है हमारा मन। हमारा मन भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है, नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए अभी ऐसा करना चाहिए, जो ऐसे मन के जो आदेश जो हमारी भक्ति में प्रगति के लिए सहयोग नहीं देते उनको भी फॉल्स गुरु, मिथ्या गुरु बोला गया है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स गुरु। ये दो प्रकार के मिथ्या गुरु है। तो ये मिथ्या गुरु को किस प्रकार वध करते हैं कृष्ण, उसके बारे में भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने हार्मोनिस्ट मैगजीन में बहुत सुंदर बातें लिखते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और आज का जो पूतना का वध है उसके बारे में समाप्त करेंगे। सबसे पहला है जैसे कृष्ण पैदा हुए तो क्या हुआ, कंस को डर लगने लगा। कंस को जैसे डर लगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे अपने अनुचरों को बुलाया, अनुचरों को बुला के उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए अभी, वो सब लोग अपना अपना आइडिया देने लगे, अपने मनगढ़ंत आइडिया, और सब लोगों ने डिसाइड किया हमको पूतना को भेजना चाहिए, मिथ्या गुरु को भेजना चाहिए। तो बक्सिनाथ ठाकुर कहते हैं जैसे कृष्ण भावना का प्रगति होता है, कृष्ण पैदा होते मतलब कृष्ण भावना का उत्पन्न होता है किसी के हृदय में, उसी समय और आजू बाजू में जितने भी लोग हैं कंस जैसे लोग हैं वो सब एकत्रित हो जाते हैं, उनके अनुचरों को बुलाते हैं और उनके हृदय में डर लगने लग जाता है, और जो है वो सब लोग आके पूतना को मिथ्या गुरु को भेजते हैं। जैसे हमको भी ये अनुभव होता है कि जब हम कृष्ण भावना को स्वीकार किए, सबसे पहला जैसे मंदिर गए और जप माला लेके आए, भगवद गीता लेके जप करना शुरू किया, तो घर वाले क्या करते हैं, तो तुरंत एक मीटिंग करते हैं, आजू बाजू वालों को पता लग जाता है कि ये सब लोग मीटिंग करते हैं, क्या हो गया आपके लड़के को, मंदिर जा रहा है जप कर रहा है। तो हमने सुना कि इस्कान वाले जो है वो वो विदेशी लोग है, ड्रग एडिक्ट लोग है। कुछ बोले नहीं, हमने सुना इस्कान वाले जो है आपके लड़के को लेके अमेरिका भेज देते, इधर कर देते उधर कर देते, उनको टकला कर देते, उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमने सुना इस्कान में ये होता है, आपके लड़के को कुछ जादू टोना कर देते हैं। तो ये सब कौन है, ये कंस के अनुचर है। तो जैसे कृष्ण भावना का जन्म हुआ हृदय में, तुरंत उसको मारने के लिए सभी लोग तत्पर हो जाते हैं। दे आर वेरी मच एंग्जाइटी। इसलिए एज सुन एज देयर इज बर्थ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो सब लोग क्या करते हैं, अपना जो भगवद गीता अगर तुम पढ़ रहोगे तो बोलेंगे ये भगवद गीता मत पढ़ो, तुमको भगवद गीता अस्तित्व पढ़ना है, तुमको मैं एक भगवद गीता देता हूं वो पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर सब गलत व्याख्या है। तो ये कृष्ण भावना को नाश करने के लिए या कृष्ण भावना की प्रगति को रुकावट पहुंचाने के लिए ये सभी लोग अलग अलग प्रकार की योजना बना के ये जो भगवद गीता और भागवत के ऊपर गलत व्याख्या करके, कृष्ण भक्ति के प्रति गलत व्याख्या करके लोगों को सुनाना शुरू करते हैं। तो ये पूतना की कहानी से मालूम पड़ता है कि किस प्रकार कंस जैसे लोग बहुत सारे हैं, वो सब लोग हमारे कृष्ण भक्ति को नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। और दूसरा कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत क्या होता है, उनको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं, ऐसे गुरु मिल जाते हैं। ये भी पूतना जैसे गुरु है जो बोलेंगे बेटा आगे जाके क्या बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तुम कहां जाओगे। तो बचपन से सिखाया जाता है कि तुम कृष्ण के दास नहीं हो, तुम कौन हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम ये हो, तुम पायलट बनो, तुम वो बनो, पूरा हमारा मन में इन्हीं बातों को डाला जाता है। तो जितने भी इस प्रकार के जो टीचर्स हैं जो हमको इस प्रकार के उपदेश देते हैं कि आप आपका भौतिक पहचान के बारे में उपदेश देते हैं, वो सब भी कौन है, वो पूतना के बराबर है। क्योंकि दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये सब बहुत सभ्य है, जैसे पूतना भी राक्षसी थी, इतना क्रूर दिखने वाली थी, लेकिन सामने कैसे प्रस्तुत हो रही थी, कृष्ण के सामने एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत हो रही थी। वैसे बहुत सारे धार्मिक उपदेशक भी मिल जाते हैं, जैसे जो आप कोई अन्य मंदिरों में जाएंगे तो उधर के जो ब्राह्मण जो पुजारी वगैरह होते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ बेटा अभी बस अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से नौकरी करो, अच्छी तरह से धन वन कमाना, अच्छा स्त्री से विवाह करना, अच्छा परिवार बसाना और थोड़ा दान धर्म करना। तो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अस्तित्व में उधर कृष्ण कॉन्शियस या कृष्ण के संबंधित कुछ भी बातें नहीं रहता। तो ये भी मिथ्या गुरु है। तो ये जो मिथ्या गुरु को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना एक बड़ा अनर्थ है। जब भी हम बहुत सारे लोगों से हमारा परिचय होता है तो हम बोलेंगे आप हरे कृष्ण नाम से जप करो, हाँ बोलते हैं कि हमारा हमने गुरु बना लिया है। तो आपके गुरु ने क्या कहा, बस हमारा गुरु कहते बस गुरु मंत्र जप करो, बाकी जो करना है करते रहो। तो बहुत अच्छा पूतना मिल गया उनको, क्यों, क्योंकि वो कृष्ण भावना को मारना चाहते, दे वॉन्ट टू किल द कृष्ण कॉन्शियसनेस विच इज जस्ट अरेज्ड इन द हार्ट। तो ये दूसरा प्रकार के मिथ्या गुरु है। एक है जो परिवार वाले माता पिता या खास करके आजू बाजू में रहने वाले, ये सब भी क्या करते हैं, अपने कृष्ण भावना को नाश करना चाहते। और जो बाहर के जो गुरु है तथाकथित जो स्कूल और कॉलेज में मिलते हैं वो भी पुतना के बराबर है। बाद में लिखते हैं द अटेंटिव सक्सेस ऑफ पुतना, जैसे कृष्ण उत्पन्न होते हैं, कितना भी इस प्रकार के मिथ्या गुरु आने दो लेकिन फिर भी कृष्ण जो है उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको वध कर देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से रहता है कृष्ण भावना के कार्यकलापों में, कृष्ण कॉन्शियसनेस कार्यकलापों में, वो कितने भी प्रकार के मिथ्या गुरु उनके सामने आए उनकी बात कभी उनके ऊपर असर नहीं करता, विल बी किल्ड। बलसिंह ठाकुर लिखते हैं एज सुन एज कृष्ण इज बॉर्न, तो जितने भी मिथ्या गुरु है उन सबके हृदय में डर लगने लग जाता है और कृष्ण जो है उन सबको निश्चित रूप में वध करेंगे। हमको क्या करना होगा, साधकों को बड़ी सतर्कता से अपनी कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों को स्वीकार करता होगा और कृष्ण के शरण ग्रहण करना होगा, तो उन मिथ्या गुरुओं का वध कृष्ण स्वयं करते, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा अधिकांश जो भक्तों को बताते हैं, जो मंदिर में आना शुरू करते हैं लेकिन घर से और बहुत सारे जगह से उनको बहुत सारे उपदेश मिलते हैं, इतना ज्यादा मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे लोगों को उपदेश हैं, आप उनको जवाब देने के लिए मत प्रयास करो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, अगर आर्ग्यूमेंट करोगे तो फंस जाओगे। आप अपना भक्ति का कार्यकलाप अच्छे से करते रहो और दृढ़ता से रहो और कृष्ण स्वयं उनको वध कर देंगे, कृष्ण स्वयं उनको सिखा देंगे, कृष्ण स्वयं उनको मार देंगे। जैसे एक लड़के के साथ इस प्रकार घटना हुआ था, तो वो मंदिर आना चाहता था, तो माता पिता ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते मंदिर। तो उस लड़के को हमने कहा ठीक है, माता पिता को समझाने के लिए मत प्रयास करो, वो तो समझेंगे नहीं। तो बोला कि बस हफ्ते में एक बार जाने दो। तो अगला दिन आया, बोला कि हाँ मुझे परमिशन मिल गया, एक बार जाने का परमिशन मिल गया, हर संडे को जा सकता हूं मैं। तब बोला ठीक है। कुछ दिन हुआ, कुछ दिन के बाद मैंने बोला कि तुम शनिवार रात को आ जाना मंदिर में और एक दिन रुके, सुबह संडे का मंगल आरती करना। तो बोला कि घर में गया, घर वाले नहीं 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 जा सकते हो, संडे को एक ही दिन जा सकते हो तुम, ये रात को इधर घर में किसी भी हालत में रहना ही है। तो एक क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो संडे सैटरडे को रात को आ गया और संडे को रुक गया। तो संडे को शाम को गया तो घर वाले एकदम चिल्लाने लगे, रात को कहां गया था, ये हुआ था ये हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा यही विचार है कि और एक प्रोग्राम होता है वेडनेसडे को, उस पर भी जाना चाहता हूं। तो लोग घर वाले बोले नहीं 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 तुमको जाना है, बस सैटरडे को शाम को जा सकते हो, रात को रखना का और बस ये पूरा हफ्ते भर तुमको पढ़ाई करना है। तो जितना व्यक्ति दृढ़ता से अपना कदम रखता है कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए, बाकी सब जितने मिथ्या गुरुओं का जो शक्ति अपने आप डाउन हो जाता है। अगर मिथ्या गुरुओं का उनकी बात थोड़ा सा हम लोग निमंत्रण देंगे, ठीक है आप भी अच्छा कह रहे हो, ठीक है मैं भी आपको पालन करूंगा, वो लोग जो है हावी हो जाते। ये जो है बड़ा टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर समझते हैं ना, बड़ा रस्सी रहता है और इधर से लोग बैठ के खींचते रहते हैं, उधर से लोग खींचते रहते हैं। तो मिथ्या गुरु लोग आपको सबको खींच के भौतिकता की ओर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त लोग जो है उनको खींच के फिर वापस कृष्ण भावना में लेके आना चाहते हैं। ये बड़ा टग ऑफ वॉर है, ये हमेशा चलता आया है। तो अगर जरा सा थोड़ा सा ढीलापन हो गया तो मिथ्या गुरु लोग जो क्या करेंगे, उनको खींच के लेके जाएंगे। तो इसलिए हमको अपने स्थान में स्थित रहना, उनको जाके झगड़ा नहीं करना है, उनको क्या करना है, जिस कृष्ण का ही शरण लेना है। कृष्ण विल एक्ट ऑन देम एंड देन नलिफाई ऑल देयर मिसकंसेप्शन, दे विल किल ऑल द मिथ्या गुरुज। जितने भी लोग कृष्ण भावना की कृष्ण भावना को स्वीकार करने से विरुद्ध हुए हमारे, वो सभी लोग कुछ समय के बाद, दो तीन साल या चार साल के बाद, वही लोग बोलेंगे ठीक है बेटा तुम जो कर रहे हो अच्छी बात कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी नाइस। ये तो अनुभव हुआ है और वो लोग भी भक्त बन जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में अगर कोई ढीला पड़ जाता है, समझ लो पूरा खत्म हो गया। तो कृष्ण ने पुतना को, जैसे पुतना ने स्तन दिया, कृष्ण ने ये नहीं सोचा ठीक है कुछ समय के बाद उनको वध करूंगा, तुरंत उन्होंने वध कर दिया। तो कुछ ऐसे मिथ्या गुरु है, वो बोलते हैं बेटा तुम भक्ति भी करो और साथ साथ में जो है भौतिक प्रगति भी करो, ये दोनों साथ साथ में करो, यू कैन डू बोथ। तो ये लोगों से बहुत डर के रहना है और लोग बोलेंगे आके आपका बेटा जो है बहुत अच्छा है, भक्ति भी करता है और अच्छा पढ़ाई लिखा भी करता है, अच्छा नौकरी भी करता है, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार के कुछ मिथ्या गुरु होते हैं, तो ये भी पूतना के बराबर है। और जैसे बक्सिनाथ ठाकुर लिखते हैं, बट पूतना कैनॉट बी सक्सेसफुल वंस रियल रिलीजन हैज एक्चुअली अपियर्ड, इन फैक्ट शी इज डिस्ट्रॉयड एट द अर्लिएस्ट पॉइंट इन इट्स डेवलपमेंट, दैट वुड बी स्लेयर इज स्लेन हरसेल्फ। This is the reward of the negative service that Putana unwittingly renders to the cause of a thief and by strangling all hypocritical demonstration against their own hypocrisy. So hypocritical demonstration, Pakshan Thakur ye bahut gehra shabd likhte hain, wo hai ye Putana ka jo mithyapan itna rehta hai ye mithya guruon ka, to waise to achhi achhi baatein kehte hain log, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसा अच्छा रहना चाहिए ऐसा अच्छा रहना चाहिए, लेकिन केवल हृदय में उनको एक ही है, विषयों का यानी इंद्रिय तृप्ति का विषय वस्तुएं भरा पड़ा हुआ है। ये कभी भी इस प्रकार की लोगों की बातें हमको कभी सुनना नहीं चाहिए। और कृष्ण जैसे पैदा होता है, कृष्ण भावना जैसा पैदा होता है, उस व्यक्ति के पास ऐसे लोगों को पहचान के वध करने का शक्ति भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना में आए हैं और भगवद्गीता भागवत थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए है, उनको तुरंत जितने भी प्रकार के साधु, जितने प्रकार के तथाकथित जो गुरु है दिखाई पड़ते हैं, उन सब में दोष दिखाई पड़ता है। हमने खुद अनुभव किया कि कुछ लोग हैं जो नए नए मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद वो सब प्रभु जी हम टीवी में वो देख रहे थे, वो बता रहे थे, पूरा गलत बता रहे थे, अरे और ये बता रहे थे नहीं, ये बता रहे थे भगवान निराकार है, ये कैसे हो सकता है, प्रभुपाद जी ने ऐसे तो नहीं लिखता। तो ये जितनों मिथ्या गुरुओं को पहचानने की शक्ति वो तुरंत आ जाता है। ये खासियत है श्री प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ने से। और कृष्ण जेन्युइन रिलीजन, जैसे सही शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होता है, जितने मिथ्या गुरुओं को पहचानने का जो कला है भक्त के अंदर आ जाता है। तो ये कौन मिथ्या गुरु है, कौन पूतना है, ये पहचानना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो केवल धार्मिकता या भावुकता को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे या भावुकता के रूप में रहेंगे तो सोचेंगे अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, वो भी अच्छे लोग है, तो इस प्रकार की भावना रहता है। नहीं, जहां कृष्ण भावना के सिद्धांत के विरुद्ध कोई भी कुछ भी बोलता है तो तुरंत उनको खंडन करना चाहिए। अगर खंडन नहीं कर सकते तो उनको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये पुत्रा की कहानी से हमको मालूम पड़ता है। तो पश्चिम सागर आखिरी में लिखते हैं, ये जो कृष्ण भावना का जो प्रगति है या कृष्ण का प्रचार है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार है, प्रीचिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये प्रचार हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यही एक सूचक है कि पूतना का वध का सूचक है। जितना व्यक्ति प्रचार करता है या जितना प्रचार हो रहा है दुनिया में, उतना ये पूतना का हार या उनका नाश का ये सूचक है। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार दुनिया भर में कहां कहां प्रचार हो रहा है, सो मच ऑफ प्रीचिंग इज गोइंग ऑन, दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ। जैसे क्योंकि कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो असुरों को वध करते जा रहे हैं, दैट इज अ प्रूफ। तो बक्षिंद्र ठाकुर लिखते हैं कि द मोर द प्रीचिंग वर्क, इट इज अ प्रूफ दैट दीज ऑल द बोगस स्पिरिचुअल मास्टर्स, बोगस गुरुज, दे ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये मिथ्या गुरु के बारे में बक्षिंद्र ठाकुर इन सब बातों को लिखते हैं। तो इसलिए कृष्ण से ये बड़ी कड़ाई से प्रार्थना करना चाहिए, जो अलग अलग प्रकार के मिथ्या गुरु हमारे सामने हैं, जो फॉल्स गुरुज हैं, उन सब को वध करें और कभी भी उनकी बातों की चंगुल में फंसे ना। वी शुड नॉट बी कॉट इन टू दिस मेस ऑफ दिस फॉल्स गुरुज, दैट इज द इंस्ट्रक्शन वी गेट फ्रॉम दिस पास्ट टाइम। तो कोई इसके बारे में प्रश्न वगैरह तो पूछिएगा।
You do your devotional service also, but you also progress materially. So could you elaborate this more?
असलियत में माता पिता बच्चों को बोलते हैं, बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मंदिर जाके आओ। क्यों? ताकि अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा तो क्या होगा, अच्छा कॉलेज में नौकरी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा नौकरी मिलेगा। अच्छा नौकरी मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा धन कमा सकता है। अच्छा धन कमाएगा क्या मिलेगा, अच्छा सुंदर स्त्री मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो अच्छे उपदेश है, तथाकथित अच्छे उपदेश है, उनके पीछे क्या लक्ष्य, क्या है लक्ष्य, क्या है, इंद्र तृप्ति, दैट इज मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वो भी एक मिथ्या गुरु है, हु प्रोपगेट्स मेटीरियलिज्म ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे भौतिकता का प्रचार, ये सबसे बड़ा मिथ्या गुरु है। जो वेशभूषा तो है आध्यात्मिक वेशभूषा, लेकिन अंदर क्या है, भौतिक प्रकृति करो आप। तो जितने तथाकथित जो गुरु लोग मिलते हैं, वो सब लोग यही करते हैं, क्या बोलते हैं, बस आप भौतिक प्रगति अच्छी तरीके से करो, वो सब जैसे है वो शुक्राचार्य के बराबर है। उनका चिंता क्या है, अगर मेरी आशीर्वाद से बड़ा व्यापारी बन जाएगा तो मुझे धन मिलेगा। जितने भी आप देखो, मैं तो सुनता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो पता लगता है तथाकथित जो जितने भी तथाकथित साधु है, बड़े 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 संस्था है, बड़े बड़े ऐश्वर्य से बड़ा बड़ा मंदिर भी बनाते हैं, उनके पास जब लोग जाते हैं उनको यही कहते हैं कि आप व्यापार करो, ये व्यापार करो, इवन बिजनेस एडवाइस भी देते हैं, और इतना आता है कि उनको धन भी देते हैं बिजनेस करने के लिए। तो बाद में वो बड़े हो जाएंगे तो उनसे वो उतना डोनेशन भी लेते हैं कि एक भगवद गीता का एक श्लोक का शिक्षा, क्या धर्म क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, उसका एक भी कुछ बातें कहते ही नहीं, और स्वाभाविक तरीके से लोग उनके पास जाएंगे ही। जो शुद्ध भक्ति नहीं है, प्रीचिंग ऑफ इरिलीजन इन द गार्ब ऑफ रिलीजन इज मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। सबसे बड़ा अधर्म का प्रचार, धर्म के वेशभूषा में अधर्म का प्रचार, धर्म के नाम के अधर्म का प्रचार, ये पूतना है। सार रूप में बोला जाए पूतना क्या है, कि कृष्ण को देखभाल करने के लिए आई पूतना, लेकिन अस्तित्व में किस रूप, क्यों सा रूप धारण करके, मां का रूप धारण करके आई, लेकिन अस्तित्व में है कौन, अंदर क्या है, जहर भरा हुआ है। तो वैसे बाहर जो है लोगों का काशाय वस्त्र रहता है, स्वामी जी है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, लोगों को भौतिक प्रगति करने के बोल रहे हैं, बस एडवांस मटीरियली। ये जो है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस पीपल, वेरी वेरी डेंजरस टू प्रोपगेट इरिलीजन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, दैट इज पूतना। बहुत, क्योंकि ये पहचानने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, वेरी सटल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, नहीं तो ऐसा कह के कितना अच्छा बोल रहा है, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, झूठ मत बोलो, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन एक भी मुक्ति की ओर, कृष्ण भक्ति की प्रगति की ओर एक भी बातें नहीं कहेंगे। सो वी शुड वेरी केयरफुल अबाउट दैट, शुड आइडेंटिफाई हु आर दोज पीपल एंड देन बी वेरी केयरफुल, वेरी डेंजरस। उनकी वति फिर से जन्म लेना होगा, दे हैव टेक बर्थ अगेन, दे विल नॉट गेट लिबरेशन। हिरण्यकशिपु, ही हैड टू टेक बर्थ अगेन, नरसिम्हा किल्ड हिरण्यकशिपु, ही टुक बर्थ अगेन एज रावण एंड कुंभकर्मा, एंड रावण एंड कुंभकर्मा अगेन टुक बर्थ, द लॉर्ड केम इन मेनी मेनी इनकार्नेशंस। हुआर द डेमन्स वर किल्ड इन एनी इनकार्नेशन, दे वर नॉट ग्रांटेड लिबरेशन, only when Krishna himself comes and kills the demons he is granted. That is true. So it is actually, technically speaking, karya, killing the demons, is vinashaya cha duskritam, that is a work done by Vishnu, Vishnu Tattva. Because when Krishna comes, Vishnu also is there within him. Actually, when Krishna kills Putana, Krishna doesn't even know that Putana is killed. It's actually Vishnu who is residing in the body of Krishna, killing Putana. Just imagine, if Krishna knows that I have killed Putana in the dead body, do you think he'll play there? it's not possible. So Krishna is always, you know, he is thinking, oh, mother has come, let me drink the milk. He is completely innocent. So that's the greatness of Krishna, that he does everything innocently. As if nothing has happened, you know. That's what Krishna is all about. Activities are divya. Huh?
difficult to understand.
Yeah, don't understand. That's why it is. If we try to understand, means we use our materialistic intelligence. If we use our spiritual intelligence, then you'll understand. Spiritual intelligence means that nothing is impossible for Krishna. That is called spiritual intelligence. We know the story of Muchi and that cobbler and the Brahmin. The Brahmin used his material intelligence. How come a camel can go through the needle? Needle is so small, elephant is so big, and how can it go through? Then when it came to the cobbler, Narada told the cobbler that Krishna is trying to put a camel through the needle's eye. Then cobbler told, oh, so wonderful. Got it? So he did not use his materialist spiritual intelligence. When it comes to Krishna, actually Krishna conscious leela, pastimes of Krishna can only be relished when one stops functioning his intelligence. So there are two things in the books. One is called Sankhya, other is Yoga. For Sankhya, you require intelligence to understand. The material world is miserable, the 24 elements, all these things, it requires a lot of intelligence. You have to apply your intelligence. By using this Sankhya, by studying this Sankhya, by using your intelligence, you are trying to remove the thorn with a thorn. The intelligence is a thorn, and already there is some mud or a thorn which is stuck into material desires in your mind. So you remove the material desires by using the Sankhya thorn, thorn of Sankhya, and throw both the thorns. When both the thorns are out, that is where you sit and then listen to the pastimes of Krishna. So don't try to apply your materialistic intelligence in understanding the pastimes of Krishna. That is why first we give the instructions on Sankhya. That is why you find in the initial lectures they are all how useless is this material world, what is Sambandhik Dhyana, what is the purpose, goal of life, and all these things discussed. We will not discuss how Krishna was playing different flutes and different notes and how gopis were attracted. We will not discuss all these things. Those people who are already fixed up in Krishna consciousness and who have already faith, certain amount of faith, then they would relish. So in general public we don't discuss these things. That's the reason. Yoga is not discussed. Sankhya is discussed. Sri Bhaktivinoda Thakur is seeing how that demons in Vrindavan, the pastimes, can be applicable to a sadhaka at the Sankhya level. We are understanding that. We are not doing this Bhagavatam study of 10th canto of Bhagavatam study at the level of 10th canto of Bhagavatam. We are doing this at the level of Bhagavad Gita. Even teachings of Lord Chaitanya, what we are doing, that is also we are doing at the level of Bhagavad Gita, not at the level of Chaitanya Charitamrita itself, because we are not qualified for that. That's the reason.
Parents nowadays, they want their students to go to the best of the schools, so-called schools.
Yeah.
And of course, there is nothing else but Mithya Gurus there.
Mm.
We are all lining up for such schools 2 years before, 3 years before.
Yeah.
So,
what to
knowingly,
do?
Because we don't have an option, what should we do in that point of time? Because you know, once they go there, the experience is that the child never comes back.
True. That is true.
The assignments are from the...
That is true. See, we are only just 30, 40 year old movement. 66 it was established. 2006 just got over. So it takes time for the society to establish the whole institution of whole social setup. Now things are coming up somewhere here and there so that we can protect the children from Mithya Gurus. But best use of the bad bargain, that's what we can do now, is to send them to school, at the same time develop a school within the temple itself at least every Sunday, so that if they get a better taste at least every Sunday. I was listening to this wonderful very logical point. Say for example, you have a Sunday feast, Sunday feast, excellent Sunday feast. Okay. Now, they are only coming on every Sunday. In between, they are all eating all rubbish. If they like what is being tasted on Sunday, though they are the whole week they are eating that place, they are doing it in a very disinterested way. And just waiting for, that means they are living in a different time scale. They are not so conscious about for 6 days. They are conscious only on Sundays. That means they are living only Sundays. The other days they are actually dead. They are not taking anything. The same way, if there is a Sunday school program in the temple and the children love it and the children are using all their intelligence just to get this thing. So there are other 6 days, other 5 days, they are just doing for the sake of doing. They are not very conscious about the whole thing. You only take things when you are actually conscious, you should understand. Like many of the students, this point was told when I was studying and then going to temple. Then I told, I also told, you know, this is all useless. I don't know. Then one devotee told me this point. You just do it for the sake of doing it. Don't take anything to the heart. So the children would not take anything to the heart. Even the teacher says something, okay, just take and write some exam and give it. It is very mechanically they will do it. So that thing can be done. It's the best. Otherwise, the problem is when you take things to the heart. If you really think that, you know, yes, Darwin is my guru. I just, okay, listen and write some exam and then pass out. What is the big deal? See, even the students who are coming to a temple and who are who would like to take up Krishna consciousness seriously, they should also have the same thing. There is nothing so big thing in that engineering drawing or that, this. Just do it and then get some marks. We don't put our consciousness, we don't really put into heart, yes, this is what it is, yeah, I just want to, you know, there are some students who have this attitude, that this is all in all, this is what I have to study, this is my life. They don't think like this. Just do it in them. So that kind of thing they will have. If you do something, develop every Sunday, that much we can do. But creating a school and then that, this is not in our capacity at present now. But things will happen gradually. Okay. Mantra Shrimad Bhagavatam ki Shri Prabhupada ki Jai.